Şetelik. Şetelik. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम की एक और कड़ी लिए हम उपस्थित हैं, जिसमें समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय के सौजन्य से और मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम विश्व हिंदी सचिवालय में होने वाली अनेक गतिविधियां जो हैं, उसमें भारत से बाहर जितने भी हमारे लोग जो हिंदी में रुचि रखते हैं या हिंदी के विषय में अध्ययन करते हैं या शोध कार्य करते हैं, उन श्रोताओं को, उन मेहमानों को हम इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं, आपसे साक्षात्कार करवाते हैं, ताकि आप हिंदी विषय के बारे में और उसके विभिन्न आयामों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहूँगी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी सचिवालय में हिंदी दिवस बड़े भव्य रूप से मनाया गया। इस तहत मॉरिशस से बाहर अनेक देशों से जो हमारे मेहमान गण हैं, वो यहाँ उन्होंने उपस्थिति दी, और इस तहत उनमें से एक हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं, और आप सिंगापुर से आई हुई हैं। आप हैं प्रसून सिंह, और प्रसून सिंह जी सिंगापुर में शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। हम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं, स्वीकार करें मेरा नमस्कार।
नमस्कार शशि जी, धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए।
मैं प्रसून जी आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया कि शिक्षण के क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं, और कितने वर्षों से आप शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं?
वैसे तो मैं भारत में शिक्षण का कार्य करती थी। मैंने पहले भारत में एक वर्ष पढ़ाया, और उसके बाद जब मैं सिंगापुर में आई तो सिंगापुर में अभी मुझे 18 वर्ष से मैं हिंदी शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ, और हिंदी सोसाइटी संस्था से इस कार्यक्रम के अंतर्गत जुड़े हूँ।
मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सिंगापुर में हिंदी की स्थिति क्या है?
सिंगापुर में हिंदी की स्थिति जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि शायद बहुत से लोग हमारे श्रोतागण ना जानते हों, या बहुत लोगों को पता भी होगा कि हिंदी विषय वहाँ पाठ्यक्रम में सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अच्छा। जहाँ पर 3 आधिकारिक भाषाएं जो मलय, चाइनीज और तमिल के जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती हैं, उसके सिवाय 5 और मातृभाषाओं को वहाँ मान्यता प्राप्त है, हिंदी, गुजराती, बंगाली, उर्दू और पंजाबी। अच्छा। तो हिंदी उन 5 भाषाओं में से एक है, और काफ़ी बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी का शिक्षण प्राथमिक 1 से लेकर ए लेवल तक की कक्षाओं में किया जाता है।
तो काफ़ी उच्च स्तरीय तक आपके स्कूलों में हिंदी जो है वो कंपलसरी एज ए ऑप्शनल एक मातृभाषा
के रूप में पढ़ाई जाती है। जैसे कि जैसे मैंने बताया, 3 आधिकारिक भाषाओं के सिवाय हिंदी भी एक मातृभाषा के रूप में विद्यार्थी ले सकते हैं, और उनकी बोर्ड लेवल के जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर भी उनकी मान्यता है
जी। तो ये तो रहा। अच्छा, जब आपने कहा कि इतने लंबे अरसों से 18 वर्ष या 19 वर्ष आपके जो हैं शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हो रहे हैं, आप नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, क्या उनमें आपको छात्र मिलते हैं जो हिंदी में दिलचस्पी रखते हैं?
बिल्कुल
मिलते हैं।
छात्र, बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी विषय लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषी
हिंदी भाषी ही
लोग हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी भाषी जो लोग हैं वो भी हिंदी पढ़ने के इच्छुक हैं, और हिंदी एक विषय के रूप में उसे लेते हैं। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सच में जो पहले जो हमारे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, उन्होंने बहुत परिश्रम किया हिंदी को एक मान्यता या ये
दिलवाने के लिए।
इनको NTIL लैंग्वेजेस कहते हैं, नॉन तमिल इंडियन लैंग्वेजेस, जो इनकी मान्यता मिली। तो शुरू में हिंदी सोसाइटी में शिवाकांत तिवारी जी ने और उनके उनके बहुत सहयोगियों ने मिलकर इसके लिए कार्य किया और ये 5 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई। तो उनके लिए हमेशा हमारे नमन, उनके परिश्रम के लिए हमेशा आभार।
बिल्कुल, मैं समझती हूँ बहुत से देशों में भारत से बाहर हमारे जो भारतीय थे वो जाकर बसे, जिन्होंने हिंदी को जो है हिंदी भाषा को जीवित रखा वहाँ पर, और जिसकी बदौलत आज हिंदी जो है विद्वान बनकर जो है वो आगे उच्च स्तरीय तक लोगों को हिंदी पढ़ा रहे हैं।
जैसे और साथ ही साथ संस्कृति भी,
अच्छा हाँ,
क्योंकि ये हिंदी तो, क्योंकि संस्कृति कोई भी भाषा उसी के साथ चलती। तो शायद जो लोग प्रवासी इस ज़्यादातर आप देखेंगे बहुत अक्सर की मतलब जब प्रवास किया लोगों ने शायद वो अपनी संस्कृति के साथ उनको जो वो उनको ऐसा ना लगे कि बिछुड़ गए हैं, तो उन्होंने उसको जीवित रखने के लिए भाषा को भी जीवित रखा और दोनों एक दूसरे को दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण किया है। तो बच्चों में भी वो संस्कृति है, वो समझ है और वो लगाव भी है।
जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने परमावत जी से जो है जाना कि संस्कृति जो है वो पढ़ने के लिए जानने के लिए लोग बड़े इच्छुक रहते हैं, तो युवाओं में कैसे आप रुचि उनकी बढ़ाते हैं या नया जोड़ते हैं संस्कृति को लेकर, किस तरह के आयोजन आप करते हैं ताकि वो उसमें और दिलचस्पी लगें?
सभी विद्यार्थियों के लिए जैसे कि मैंने बताया कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, तो आजकल पाठ्यक्रम का प्रारूप भी आपने देखा कि बहुत सारे जैसे वाक मॉडल है, सारी चीज़ें कि बच्चे उसे दृश्य श्रव्य कर कुछ स्वतः करें, तो इस तरह से विषय को ज़्यादा समझते और सीखते हैं। तो तरह तरह की गतिविधियाँ की जाती हैं। तो मान लीजिए कि खेल दिवस है, खेल दिवस एक ऐसे कहने में तो खेल दिवस लगता है, लेकिन अगर आप उसे भाषा से जोड़ते हैं, संस्कृति से जोड़ते हैं, तरह तरह के खेल खिलाते हैं, उनकी शब्दावली बताते हैं, उसी तरह से दीपावली मातृ दिवस, उसमें बच्चे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, पर्व, पर्व की महत्व, पर्व का क्या महत्व है, पर्व कैसे मनाया जाए, उससे जुड़ी कथाएं हैं और उसके उसको किसी को आपको शुभकामनाएं देनी है, उसके लिए कार्ड बनाने हैं, तो उसके और कितने रंगा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जो लोक गीत सुनते हैं बच्चे, तो इस तरह से उनमें एक
रुचि जो है वो और मतलब कार्यक्रम कैरिकुलम के अलावा भी जो है हम आप छात्रों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए पर्वों पर सिनेमा से, संस्कृति से, इतिहास से जो है साहित्य से जोड़ा जाता है ताकि उनमें दिलचस्पी जो है बढ़े और इस तरह के अनेक कार्यक्रम जो है जैसे
समय समय पर
किए जाते हैं,
आयोजित किए जाते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका अनुभव, जैसे कि अब जैसे स्कूलों में तो है कंपलसरी, तो इसके अलावा कोई ऐसी सरकार की तरफ से कोई सुविधा छात्राओं को, जैसे हमारे यहाँ बैठकाएँ चलती हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई भी एक लैंग्वेज जो है आप ऑप्शनल आपको लेनी पड़ती है, कंपलसरी होती है, उसके लिए हमारी सरकार जो है छात्रों को जो है सुविधा प्रदान करती है, बैठकाएँ जो है प्रोवाइड करती है, वहाँ पर उनको मुफ्त जो है हर भाषा की पढ़ाई जो है बच्चे जा सकते हैं, उसके लिए कोई भी उनको पे नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रावधान? क्योंकि हिंदी सभी तो नहीं जानते होंगे अपने घर में, जैसे कि आपने कहा
जी, सभी नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक जो सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्रालय ने जो ये शुरू किया है कि हिंदी पढ़ने का एक अवसर दिया है।
अच्छा,
तो कक्षाएँ कुछ विद्यालयों में मंडे सोमवार से शुक्रवार के बीच में जो उनकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वहाँ पर भी कक्षाएं हो जाती हैं। अच्छा। और अगर उन्हें विद्यार्थियों को वहाँ पढ़ने का अवसर नहीं प्राप्त है तो सप्ताहांत में भी कक्षाओं में वो पढ़ सकते हैं।
अच्छा,
इन विषयों को। अच्छा। तो ये सुविधा उनकी तरफ से,
ये बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि कई कई बार होते हैं जो नॉन हिंदी होते हैं उनको हिंदी, जैसे हमारे पास ही कितने बच्चे आते हैं जो कि नॉन हिंदी हैं, जो बोलते जिनके घरों में भी बोली नहीं जाती, तो उनके माता पिता को बच्चों के को हिंदी पढ़ाना, क्योंकि सिर्फ आकर स्कूल में चले जाएं बच्चे और पेरेंट्स का कोई वो ना हो, मतलब कोई सहयोग ना हो, तो कई कई बार बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर दोनों तरफ से बात बनती हो तो उनके लिए बैठकाएं रखी गई हैं इसीलिए यहाँ पर, ताकि वो आकर सीखें, पढ़ें, और कुछ जैसे आपने कहा श्रव्य हैं, फिर
दृश्य
जो हैं, हाँ, इनके माध्यम से।
और अभी तो क्या है कि आप देखिए तकनीकी कितनी आगे बढ़ गई है। कि सब टाइटल्स भी लिख कर आते हैं, उनको पढ़ के या उन्हें सुन कर देखना।
हाँ, पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमको ये समझिए, आप समझाएं ताकि हम बच्चों को समझा सकें।
वयस्कों के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए भी कक्षाएं हैं, तो वहां पर वो सीख सकते हैं।
अच्छा, सिंगापुर में हिंदी को लेकर आपकी क्या भावी योजनाएं हैं, ताकि हिंदी से लोग जो हैं, युवा कैसे जुड़ सकें?
युवा, एक तो आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित है, तो जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ते रहें। तो हम लोग हिंदी सोसाइटी की तरफ से एक एल्यूमिनी क्लब भी है।
अच्छा।
बच्चे जो पढ़ कर गए हैं वे आगे आए, वे आकर कभी कहानी सुनाए, या जो लोग कुछ ऐसे कार्यक्रम,
मंचन होता हुआ,
नाटक वगैरह होते हैं, कुछ क्लासेस चलती हैं, कक्षाएं चलती हैं, कभी स्पीच एंड ड्रामा बच्चों को सिखाते हैं, या कुछ हम लोग ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाते हैं जिससे वे जुड़े रहते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा बच्चे सीखते हैं।
आप मॉरिशस में पहली बार आई हैं?
जी बिल्कुल, पहली बार, और शायद मैं इस महाद्वीप वाले, अगर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही आता है तो ये महाद्वीप में भी मैं पहली बार ही आई हूँ।
तो चलें, आपका सफर यहाँ अच्छा हो ये हम आशा करते हैं, और आपके शिक्षण के क्षेत्र में आप प्रगति करती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, और आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से आभार। श्रोताओं, यहाँ पर प्रसून जी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हुए अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन कर रहे हैं।
धन्यवाद शशि जी इस मंच पर बुलाने के लिए और इस बातचीत के लिए।
धन्यवाद श्रोताओं, एक और कार्यक्रम तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।